136। इस गीत में यद्यपि सौ और ब आए हैं, तथापि अनुप्रास के कारण कुछ मधुरता आ गई है। इसमें लतिका और सरसी दोनों में नारी सौंदर्य की व्यंजना है। विद्यापति में भी वसंत का सुंदर मानवीकरण मिलता है। श्री सुमित्रानंदन पंत तो प्रकृति के ही कवि हैं। उन्होंने स्फुट रूप से तथा ज्योत्सना में भी अनेक प्रकृति संबंधी गीत लिखे हैं। इन गीतों में प्रकृति सौंदर्य के प्रति एक निजी उल्लास परिलक्षित होता है। वे प्रकृति से ऐसे घुल मिल गए हैं कि उसे आदान प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। विजन वन में तुमने सुकुमारी कहाँ पाया यह मेरा गान, मुझे लौटा दो वह कुमारी सजल मेरा सोने सा गान। प्राकृतिक दृश्य द्वारा वे निराकार साकार की दार्शनिक बुद्धियों को भी सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। निराकार तब मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि जगी सुरभि डोले मधुबाला, स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जगने अपनाना। आधुनिक कवि पंत, इसमें प्रातः काल के होते ही जितने क्रियाकलाप का संचार होने लगता है उसका एक प्रस्फुटन सा हो जाता है और मन में एक नए जीवन और उल्लास की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। इस गीत की प्रथम दो पंक्तियों में चिड़ियों की सहज वृत्तियों के प्रति एक रहस्यमय कौतूहल भी है। इस कौतूहल की शांति जगत के आध्यात्मिक आधार से होती है। पंत जी ने अपने ज्योत्स्ना नाम के नाटक में भी सुंदर गीत लिखे हैं। नीचे एक लहरों का गीत दिया जाता है जिसमें लहरों की आत्मकथा बहुत कुछ मनुष्य के जीवन मरण और पुनर्जन्म से समता रखती है। ऐसा सामने विश्व में एक सूत्रता का भाव उत्पन्न करता है। पृष्ठ 137। अपने ही सुख से चीर चंचल हम खिल खिल पड़ती हैं प्रतिपल, चीर जन्म मरण को हंस हंस कर हम आलिंगन करती पल पल। फिर असीम रो उठ उठ कर फिर असीम से हो ओझल। ज्योत्स्ना। महादेवी जी ने प्रकृति का मानवीकरण कर सुंदर छायावादी गीत लिखे हैं। उनका आ वसंत रजनी वाला गीत बहुत प्रसिद्ध पा चुका है। धीरे धीरे उधर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारक मैनव वेड़ी बंधन शीश फूल कर शशिका नूतन, रश्मि वलय सित धन अवगुंठन, मुक्ता दल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी पुल काती आ वसंत रजनी। आधुनिक कवि महादेव वर्मा। श्रीमती महादेव वर्मा का विराट भावना से प्रेरित एक प्रकृति संबंधी गीत यहाँ उद्धृत किया जाता है। इसमें परमात्मा को प्रकृति नटी के रूप में देखा गया है और प्राकृतिक विभूतियों से उनका श्रृंगार किया गया है। इसमें छायावाद की अपेक्षा रहस्यवाद अधिक है। लय गीत मधिर गति ताल अमर, अप्सरी तेरा नर्तन सुंदर, आलोक तिमिर सित असीत चीर, सागर गर्जन रुझन मंजीर। उड़ता झंझा में अलग जाल, मेघों में मुखरित किंकिण स्वर, अप्सरी तेरा नर्तन सुंदर, रवि शशि तेरे अवतन स्लोल, सीमंत जटिल तारक अमोल, चपल विभ्रम स्मित इंद्र धनुष, हिमकड़ वन झरते श्वेत निकर, अप्सरी तेरा नर्तन सुंदर। पृष्ठ 138। प्रसाद और महादेवी जैसे रहस्यवादी कवियों के लिए प्रकृति के कण कण में देवी सत्ता की झलक मिलती है और वह सजीव होती है। प्रकृति में आध्यात्मिक सत्ता का आभास पाने पर ही उसमें मानवीय भावों का आरोप संभव होता है। महादेवी जी इस आध्यात्मिक आधार के संबंध में अपने सांध्य गीत की भूमिका में लिखती हैं। प्रकृति के लघु दृढ़ और महान वृक्ष, कोमल कलियां और कठोर शिलाएं, अस्थिर जल और स्थिर पर्वत, निविड़ अंधकार और उज्जवल विद्युत रेखा, मानव की लघुता विशालता, कोमलता कठोरता, चंचलता निश्चलता और मोह ज्ञान का केवल प्रतिबिंब न होकर एक ही विराट से उत्पन्न सहोदर है। जब प्रकृति की अनेक रूपता में परिवर्तनशील विभिन्नता में कवि ने ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक शोर किसी असीम चेतन और दूसरा उसके असीम हृदय में समाया हुआ था, तब प्रकृति का एक एक अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा। सांध गीत भूमिका, जीवन मीमांसा संबंधी गीत। हमारे रहस्यवादी कवियों में यह जीवन मीमांसा एकात्मवाद की दृढ़ वृत्ति पर अवलंबित है। इसमें सुख दुख दोनों ही परमात्मा की देन के रूप में प्रसन्नता से अपनाए हो जाते हैं। देखिए महादेवी जी क्या कहती है। सखी मैं हूँ अमर सुहाग भरी, प्रिय के अनंत अनुराग भरी, किसको त्यागू किसको मांगू, है एक मुझे मधुमय विस्मय, प्रिय के संदेशों के वाहक, मैं सुख दुख भेटूंगी भुझ भर, मेरी लघु पलकों में छलकी इस कड़कड़ में ममता बिखरे। सांध गीत। रवि बाबू ने भी भगवान के आभूषणों की अपेक्षा उनके खड़क को और भी मनोहर कहा है। देखिए, सुंदर बटे सब अंग दखानी, ताराय ताराय खचित, स्वर्णे रत्ने शोभन जानी, वर्णे वर्णे रचित, खड़क तो मार आरो मनोहर लागे, बांका विदते आका से। गीतांजलि पृष्ठ 139। पंत जी जितने भावुक हैं उतने ही वे दार्शनिक भी हैं, जैसा कि निम्नोक्त छंदों से स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने एक में सुख दुख का संतुलन चाहा है, दो में वह जीवन से विराम नहीं चाहते हैं, और तीन उन्होंने बंधन में ही मुक्ति के दर्शन किए हैं। उनकी भावनाएं क्रमशः नीचे के छंदों में दी जाती हैं। एक, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जावे दुख सुख से और सुख दुख से, आधुनिक कवि पंत। दो, जीवन की लहर लहर से हंस खेल रे नाविक, जीवन के अंतस्तल में नित बूढ़ बूढ़ रे भाविक, अस्थिर है जग का सुख दुख, जीवन ही नित्य चिरंतन, सुख दुख से ऊपर मन का जीवन ही रे अवलंबन, सुंदर से अति सुंदरतर, सुंदरतर से सुंदरतम, सुंदर जीवन का क्रम रे, सुंदर सुंदर जग जीवन। पल्लवीनी। तीन, तप रे मधुर मधुर मन, विश्व वेदना में तप प्रतिपल, जग जीवन की ज्वाला मेघल, बन अकलुष उज्जवल और कोमल, तप रे विधुर विधुर मन, तेरी मधुर मुक्ति ही बंधन, गंधहीन तो गंध युक्त बन, निज अरूप में भर स्वरूप मन। प्रश्न 140। मूर्तिवान बन निर्धन, गल रे गल निष्ठुर मन, आधुनिक कवि पंत। वैसे तो यह प्रवृत्ति का युग है, किंतु आधुनिक साहित्य में रवि बाबू ने बंधन में मुक्ति वाली भावना को अग्रसर किया था। यह बात श्रीमद् भागवत गीता के निष्काम कर्म द्वारा ही संपादित हो सकती है। रवि बाबू की उक्ति देखिए। वैराग्य साधने मुक्ति से आमार नए, असंख्य बंधन माझे महानंदमय, लभ्यो मुक्तिर स्वाद। गीतांजलि। आध्यात्मिक विरह मिलन के गीत। प्राचीन रहस्यवादियों की भांति आधुनिक रहस्यवादियों ने विरह मिलन के गीत लिखे हैं। उनमें मिलन की अपेक्षा विरह के गीत अधिक हैं। यह कहना तो कठिन है कि यह विरह कहाँ तक अनुभूतिमय है, किंतु इसमें विरह दशा की कल्पनाएं अवश्य हैं। इन कल्पनाओं के लिए कम से कम इतनी अनुभूति अवश्य मानी जाएगी जितनी की मुलल्मा करने के लिए सोने या चांदी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जिनमें वह अपने को भौतिक बंधनों से ऊंचा उठा पाता है। उन्हीं क्षणों की अनुभूति कल्पना से विस्तृत और तीव्रतर बना ली जाती है। यह संभव है कि इन विरह गीतों के तल में लौकिक विरह ही हो, किंतु वह उन्नत हो गया है। उसका कलुष कर्दम बहुत कुछ बैठ गया है और निर्मल जल ऊपर आ गया है। ये गीत हमको प्रसाद और महादेवी में अधिक मिलते हैं। महादेवी जी ने विरह को ही अपना आराध्य बना लिया है। प्रिय पद के यह शूल मुझे अली प्यारी हीरे, आकुलता ही आज हो गई तन्मय राधा, विरह बना आराध्य द्वैत क्या कैसी बात है। सांध गीत। विरह के कारण महादेवी जी स्वयं आराध्यमय हो जाती हैं, क्योंकि विरह में संयोग की अपेक्षा तन्मयता कुछ अधिक होती है। हो गई मैं आराध्यमय विरह की आराधना से, विरह ही उनका वियोग और सुहाग दोनों है। विरह में ही वे मिलन मानती हैं। उनकी विरह की अधीरता देखिए। फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार और क्या है। प्रश्न 141। जा रहे जिस पंथ से युग, कल्प उसका छोड़ क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे स्वास घेरे। सांदगीत। आजकल के रहस्यवादियों ने अपने प्रियतम के दर्शन अधिकतर प्रकृति के अवगुंठन में ही होकर किए हैं। कम से कम उनमें उस अवगुंठन को उठाकर दर्शन करने की साध है। रहस्यवादी कवि तारकों में प्रियतम के नेत्रों का आभास पाता है। सो रहा है विश्व पर प्रिय तारकों में जागता है। यह सब भगवान के विराट रूप का ही कवित्व में चिंतन है। प्राकृतिक दृश्य की ओट में प्रियतम के साथ आंख मिचौनी के खेल में परमात्मा की व्यापकता में विश्वास तथा इस युग के लोगों का उससे साक्षात्कार न होने की आत्म स्वीकृति है। अली कैसे उनको पाऊं? वे आंसू बनकर मेरे इस कारण ढुलढुल जाते हैं। इन पलकों के बंधन में मैं बांध बांध पछताऊं। मेघों में विद्युत सी छवि उनकी बनकर मिट जाऊं। आंखों की चित्रपटी में जिनमें मैं आंख न पाऊं। वे स्मृति बनकर मानस में खटका करते हैं निश्चिन। उनकी इस निष्ठुरता को जिसमें मैं भूल न जाऊं। आधुनिक कवि महादेव वर्मा। इस गीत में यद्यपि कल्पना अधिक है, तथापि वह भावना प्रेरित है और उसमें मिलन के अभाव की एक मीठी कसक है। यह कसक कवियत्री के जीवन का अंग सा बन गई है। उसका वे परित्याग नहीं करना चाहती हैं। अब न लौटने कहो अभिशाप की वह पी, बन चुकी स्पंदन हृदय में और नयन में नीर। प्रसाद जी ने एक गीत में मिलन की सी प्रसन्नता का भी वर्णन किया है, किंतु वह अधिकांश में कल्पना ही है। देखिए, मिल गए प्रीतम हमारे मिल गए, यह अलस जीवन सफल अब हो गया। कौन कहता है जगत है दुखमय, वह सरस संसार सुख का सिंधु है। राष्ट्रीय गीत। छायावाद के राष्ट्रीय गीतों में एक विशेष कोमलता और शालीनता है। उनमें देश के प्रति गौरव की भावना जागृत की गई है और जगत की अपूर्णताओं। प्रश्न 142। क्रूरताओं एवं कर्कशताओं को मंगलमय भगवान की मंगल विधायनी शक्तियों के सहारे स्निग्ध और सुडैल बनाने की कामना प्रकट की गई है। चंद्रगुप्त नाटक में यूनानी सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कोर्नेलिया द्वारा गाया गया सुप्रसिद्ध गीत छायावाद की राष्ट्रीय प्रवृत्ति का एक सुंदर उदाहरण है। इसमें अपने देश की शांति और विश्रामदायिनी शक्ति का स्तवन है और देश के प्रति अनुराग ही नहीं उत्पन्न होता, वरन चित्त को प्रसन्नता मिलती है। देखिए, अरुण या मध में देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाश रही तरशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीर निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा। चंद्रगुप्त द्वितीय अंक। प्रसाद जी का एक अभियान गीत बहुत प्रसिद्धि पा चुका है। इसमें एक जातीय गर्व, ओज, शालीनता और स्वतंत्रता स्वयं शैल शिखर में से पुकारती हुई सुनाई पड़ती है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्थ वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। चंद्रगुप्त चतुर्थ अंक। पंडित सोहनलाल द्विवेदी द्वारा अन्य कवियों ने भी ऐसे अभियान गीत लिखे हैं। द्विवेदी जी तो विशेष रूप से गांधीवाद के कवि हैं। संसार को मंगल में बनाने की उत्कट अभिलाषा की प्रतिध्वनि पंत जी के गुंजन से उद्धृत निम्नलिखित प्रार्थना में सुनाई पड़ती है। जग के उर्वर आंगन में बरसो ज्योतिर्मय जीवन, बरसो लघु लघु दृढ़ तरु पर है चीर अव्यय चीर नूतन। पृष्ठ 143। बरसो सुख बन सुखमा बन, बरसो जग जीवन के घन, दिशे दिशे में औ पल पल में, बरसो संस्कृति के सावन पलवेनी। निराला जी ने राष्ट्रीय प्रभाती के रूप में एक उद्बोधन गीत गाया है, जिसमें छायावाद की पूर्ण कोमलता और चित्रमयता दृष्टिगोचर होती है। ऐसी ही उक्तियां काव्य के लिए कांता समेत तोपदेश युजे की बात सार्थक करती है। देखिए, जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार, जागो फिर एक बार अपरा। जागो फिर एक बार उगे अरुणांचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में क्षण क्षण में परिवर्तित, होते रहे प्रकृति पर अपरा। छायावाद के राष्ट्रीय गीतों में व्यंजना का प्राधान्य रहता है और कवित्व की ओर अधिक ध्यान रखा जाता है। ऐसे गीतों में देश की वर्तमान दशा पर करुणा क्रंदन रहता है, किंतु वह उग्र नहीं होने पाता। असलियत को प्रतीकों द्वारा व्यंजित किया जाता है। देखिए, आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सोनी सा, वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भाव, अकिंचनता में निज तत्काल, सिहर उठती जीवन है भाव, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार, आधुनिक कविपन। पृष्ठ 144। यद्यपि इसमें परिवर्तन की दार्शनिक समस्या है और जगत की नश्वरता की ओर भी इशारा है, तथापि इसके जो चित्र हैं वे देश की गिरी हुई दशा के द्योतक हैं। प्रगतिवादी गीतों में कुछ विशेष उग्रता रहती है, उनमें यथार्थवाद की पूरी कर्कशता उतर आती है। लौकिक प्रेम गति। छायावादी लौकिक प्रेम गीतों में अधिकांश में एक विफल प्रेम की टीस और कसक रहती है, तथा कुछ में वासना का भी विलास रहता है। इस मामले में छायावादी और प्रगतिवादी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। प्रगतिवादी लोगों में रूढ़ियों के विरोध की उग्रता के साथ यथार्थवाद की मात्रा पर्याप्त रूप में रहती है। वेदना और कसक के उदाहरण स्वरूप प्रसाद जी का एक नाटकीय गीत नीचे दिया जाता है। इस प्रकार के त्याग पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना में वासना का कदर नीचे बैठ जाता है। प्रसाद जी के नाटकीय गीत यद्यपि एक विशेष संदर्भ से बंधे हुए हैं और इस कारण वैयक्तिक भी हैं, तथापि वे ऐसे हैं कि उनकी ताल लय पर प्रत्येक प्रेमी हृदय प्रतिस्पंदित होने लगता है। गीतों में वैयक्तिकता बाधक नहीं साधक हो जाती है और एक विशेष तीव्रता प्रदान करती है। कंदगुप्त की देवसेना का जीवन ही गीतमय है। अंत में उसकी निराशा और करुणा भी गीत में ही प्रकाश पाती है। निराशा और पराकाष्ठा में ही देवसेना को शांति मिलती है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती, विश्व न संभलेगी या मुझसे, इसने मन की लाज गवाई। स्कंदगुप्त पंचम अंक। जिस हाथी को उसने निजी बनाकर अपनाया था, संसार के वात्य चक्र में न संभल सकने के कारण वह उसे विश्व को सौंपकर सुख और शांति का अनुभव करती है। प्रणय भाव से प्रेरित पंत जी द्वारा अंकित भावी पत्नी का एक काल्पनिक चित्र यहाँ दिया जाता है। इसमें वासना की अपेक्षा कल्पना की सौंदर्य उपासना और कोमलता अधिक है। प्रश्न 145। प्रिय प्राणों की प्राण, न जाने किस गृह में अनजान, छिपे हो तुम स्वर्गीय विधान, नवल कलिकाओं की सी बाण, बाल रति सी अनुपम असमान, न जाने कौन कहां अनजान। प्रिय प्राणों की प्राण, चूम लघु पद चंचलता प्राण, फूटते होंगे नव जल स्रोत, मुकुल बनती होगी मुस्कान, प्रिय प्राणों की प्राण। पल्लवी। इस सौंदर्य चित्र में ऐन्द्रिकता की अपेक्षा सौंदर्य से प्रभावित हृदय का उल्लास अधिक है। यह सौंदर्य भी बड़ा गतिशील है, इतना कि दूसरे की भी गतिशील बना ले। चूम लघु पद चंचलता प्राण, फूटते होंगे नव जल स्रोत, इसमें जायसी का सा प्रकृति और मानव का आदान प्रदान है। प्रकृति को मानव का अनुगामी बनाकर प्रतीक अलंकार की ध्वनि उत्पन्न की गई है। नीचे के गीत में वासना की अधीरता व्यंजित होती है। आज रहने दो यग्रे काज, प्राण रहने दो यग्रे काज, आज जाने कैसी वातास, छोड़ती सौरभ स्थल उच्छ्वास, प्रिय लालस सालस वातास, जग रो में सौ अभिलाष। पल्लवीनी। इसमें रस शास्त्र के अनुकूल प्रकृति के स्वाभाविक उद्दीपन की भावना वातास के सौरभ श्लत उच्छ्वास में प्रकट हो रही है। नवीन कवियों ने प्राचीन रस पद्धतियों, रूढ़ियों और परंपराओं का तिरस्कार नहीं किया है। नरेंद्र के नीचे के गीत में स्मृति भाव भी है और वह स्मरण अलंकार के सहारे ही आगे बढ़ा है। मेरा घर हो नदी किनारे, रह रह याद तुम्हारी आए, देख मचलती तरल लहरियां, देखूं जब पल भर आंखें भर। पृष्ठ 146। कभी उछलती चटिल मछलियां, खुले हृदय में नयन तुम्हारे, मेरा घर हो नदी किनारे। प्रवासी के गीत। प्रगतिवाद, छायावाद, रहस्यवाद के अपेक्षाकृत हास के पश्चात प्रगतिवाद का युग आया। यह छायावाद की सूक्ष्मता, वायवीयता, वायवीपन और पलायनवाद की प्रतिक्रिया थी। इस वाद ने कविता को जीवन के संपर्क में लाने की मांग पेश करके, यह मांग बड़े जोरदार शब्दों में आचार्य शुक्ल जी द्वारा पहले ही हो चुकी थी। शोषित पीड़ित मानवता का पक्ष लिया, किसान मजदूरों की हिमायत इसका मुख्य ध्येय हुआ और पूंजीपतियों को पानी पी पी कर कोसना साथ ही अपेक्षाकृत दबे जवान में सामंतशाही को भी चुनौती देना इसका धर्म बना तथा वर्ग संघर्ष और क्रांति के नारे लगाए जाने लगे। किसान मजदूरों का हित साधन और प्रतिक्रियावादी अर्थात शोषकों एवं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना ही कविता की कसौटी बनी। रूस लाल झंडे, लाल सेना और मार्क्सवाद की बात बात में दुहाई दी जाने लगी। यही है संक्षेप में प्रगतिवाद। इसमें जनहित की भावना प्रधान है, किंतु इसकी पद्धति संघर्षमय है। छायावाद और प्रगतिवाद दोनों ही दो भिन्न भिन्न प्रकार की मनोवृत्ति हैं, मनोवृत्ति के परछायक हैं। छायावाद कोमल और अंतर्मुखी वृत्ति का और प्रगतिवाद कठोर और बहिर्मुखी वृत्ति का। प्रगतिवाद में भी राष्ट्रीय भावना है, किंतु उसमें शोषित के प्रति करुणा के साथ साथ शोषक के प्रति उग्र घृणापूर्ण विद्रोह भी है। छायावाद में गांधीवाद से प्रभावित कष्ट सहिष्णुता की एकांत साधना है और यदि सामूहिक विद्रोह भी है तो वह बड़ा विनत और शालीन है। प्रगतिवाद में मार्क्सवाद की क्रांति की सामूहिक भावना है। छायावाद आदर्शवाद की ओर अधिक झुका है, तो उसका प्रतिद्वंदी यथार्थवाद की जो कभी कभी नग्न रूप धारण कर लेता है और जा रहा है। प्रेम गीत दोनों ने गाए। प्रगतिवाद की राष्ट्रीयता आर्य समाज की परिशुद्धतावादी राष्ट्रीयता न थी। मानवीय हृदय की स्वाभाविक पुकार को उनकी राष्ट्रीयता दबा न सकी, किंतु छायावादी और प्रगतिवादी प्रेम वर्णन में अंतर है। छायावादी प्रेम गीतों में एक विशेष सूक्ष्मता, सांकेतिकता, साधना और आत्मसमर्पण की भावना है। प्रगतिवादी प्रेम गीत अधिक स्थूल, अपेक्षाकृत निवारण और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना से मिश्रित रहते हैं। उनमें स्वयं मिट जाने की अपेक्षा मिटा देने की भावना अधिक है। यही हाल राष्ट्रीय भावना का है। छायावादी राष्ट्रीय गीतों में एक विशेष कोमलता और वायवी स्वप्निल वातावरण रहता है। उनमें जागरण भेरी रव अवश्य है, किंतु यह प्रभाती सा मंद और मधुर है। निराला जी आदि में कहीं कहीं उग्रता भी आ गई है। उसमें आग लगाने की भावना की अपेक्षा बलिदान की साधना अधिक है। यद्यपि प्रगतिवाद यथार्थवाद का आश्रय लेकर बढ़ा है, तथापि उसमें भावुकता प्रश्न 147 का अभाव नहीं है। वह गीत काव्य की सृष्टि करने में समर्थ हुआ है। उसके गीतों की यह विशेषता है कि वे लोक गीतों के निकट आ सके हैं और उनका जनता में प्रचार हो सकता है। कहीं कहीं यह भावना कि इनमें जो स्तवन और विचारधारा है वह भारतीय होने की अपेक्षा रूस की अधिक है, बाधक होती है। जहाँ ये लोग वर्ग संघर्ष की कटुता के कारण शालीनता खो बैठे हैं, वहाँ कला का भी अभाव नहीं है। पंत जी जैसे छायावादी कवियों ने प्रगतिवाद को कलामय बना दिया है और वह भी छायावाद की कला को अपनाता जाता है। खेत की केवल यही बात है कि जो अनुभूति की कमी और रूढ़िवाद का प्रसार छायावाद रहस्यवाद की कविताओं में दोष रूप से माना जाता था, उन्हीं दोषों को प्रगतिवाद में भी आश्रय मिल रहा है। हमको उनके दोषों की अपेक्षा उसकी उत्तमता से मतलब है। हमें गुठलियां नहीं रस चाहिए। संक्षेप में प्रगतिवादी गीतों के मूल विषय इस प्रकार हैं: एक, किसान मजदूरों के प्रति सहानुभूति तथा पूंजीपतियों और अन्य शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह। दो, रूस मास्को और लाल सेना का यशगान। तीन, उन्मुक्त प्रेम। चार, गांधीवाद के प्रति विद्रोह और मार्क्सवाद का समर्थन। यह गीतों में कम है, गद्य लेखों और उपन्यासों में अधिक। और पांच, हिंदू मुस्लिम ऐक्य। किसान मजदूर। प्रगतिवादी कवियों में पंत जी अपनी पिछली कविताओं में निराला जी, तोड़ती पत्थर, कुरकुरता आदि कविताओं में नरेंद्र, अंचल, सुमन दिनकर, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव आदि प्रमुख हैं। पंडित उदय शंकर भट्ट ने एक मजदूर का बड़ा दर्द भरा चित्र अंकित किया है। गर्मी, बसंत और बरसात के दृश्य सब उसके शरीर में ही मिल जाते हैं। इसकी अंतिम पंक्तियों में जो तुलना है वह करुणापूर्ण है। देखिए, मेरी बरसाते आंसू रे, मेरा बसंत पीला शरीर, गर्मी झरनों सा स्वेद, मेरे साथी दुख दर्द पीर, दिन उनको मुझको रात मिली, श्रम मुझे आराम मिली, बलि देने को प्राण मिले, हंटर को सूखा चाम मिला। श्री अंचल जी किसानों की व्यथा का चित्रण करते हुए लिखते हैं, इन खलिहानों में गूंज रही किन अपमानों की लाचारी, हिलती हड्डी के ढांचों ने पीटती देखी घर की नारी। जब लोट लोट सी पड़ती है ये गेहूं धानों की बाले, है याद इन्हें आती जब खिंचती थी तेरी खाले। युग युग के अत्याचारों की आकृतियां जीवन के तल में, घिर घिर कर पूंजी भूत हुई जो रजनी की छाया छल में। बंगाल का अकाल भी प्रगतिवादियों का बड़ा रुचिकर विषय रहा है। इसमें पृष्ठ 148 पीड़ितों के प्रति करुणा की भावना तो है ही, किंतु साथ ही इसमें शोषक पूंजीपतियों और चोर बाजार के व्यापारियों के प्रति एक घृणा की भी व्यंजना रहती है। अकाल कविताओं में जो विशेष बल है उसका मूल कारण तो मैं न कहूंगा, किंतु सहायक कारण अवश्य पूंजीपति के प्रति अवचेतन वासी घृणा का अंश है। सुमन जी ने तथा केदारनाथ जी अग्रवाल ने बंगाल के अकाल के बड़े मर्मभेदी गीत लिखे हैं। बंगाल के संबंध में श्री केदारनाथ द्वारा अंकित एक करुणा चित्र देखिए। बाप बेटा बेचता है, भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनरीत बरबर, राष्ट्र सारा देखता है, बाप बेटा बेचता है, माँ अचेतन हो रही है, मूर्छना में रो रही है, दम्भ के निर्भय चरण पर प्रेम माथा टेकता है, बाप बेटा बेचता है। रूस और लाल सेना, इस विषय में प्रगतिवादियों का मन अधिक्रमा है और उसमें अनेक हृदय का उल्लास भी दिखाई देता है। इन गीतों में गीत काव्योचित प्रवाह भी है, किंतु उस प्रवाह के गीतों के साथ जनता का हृदय प्रतिस्पंदित होते नहीं सुनाई पड़ता है। सब लोग रूस को ही दुनिया की आजादी का प्रतीक नहीं मान सकते हैं। हमारे हृदय में जो भारत माता के प्रति भावोल्लास उठ सकता है वह रूस के प्रति नहीं, जर्मनी की फौज से नहीं, वरन हमारे हृदय से भी मास्को अब भी दूर है, क्योंकि हमारे समक्ष में रूस यूरोप वाले मानवता के आदर्शों से कोसों दूर है। वे विजितों के साथ उदारता तो दूर न्याय भी नहीं कर सके हैं। खैर, यह राजनीति का विषयांतर है। अब रूस और लाल सेना से स्तवन संबंधी सुमन जी का एक गतिमय गीत लीजिए। युगों की सड़ी रूढ़ियों को कुचलती, जहर की लहर सी मचलती, अंधेरी निशा में मशालों से जलती, चली जा रही है बड़ी लाल सेना, समाजी विषमता की नींवें मिटाती, गरीबों की दुनिया में जीवन जगाती, अमीरों की सोने की लंका जलाती, चली जा रही है बड़ी लाल सेना। पृष्ठ 149। हम रूस की बहादुरी और देश प्रेम की सराहना कर सकते हैं, किंतु हम प्रगतिवादियों के साथ सुर में सुर मिलाकर यह नहीं कह सकते कि लाल रूस का दुश्मन साथी दुश्मन सब इंसानों का। रूस में भी दोष हो सकते हैं, उसमें भी साम्राज्य लिप्सा और एटम बम की विध्वंस कारणी मानव अभावना आ सकती है। प्रेम की प्रगतिवाद सिद्धांतता रूढ़ियों के विरुद्ध है और उसमें उन्मुक्त प्रेम को अधिक आश्रय मिलता है। नवीन नरेंद्र तथा अंचल के प्रेम गीतों में भौतिक पक्ष की प्रधानता है और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह प्रतिध्वनित होता सुनाई पड़ता है। हम विस्तार भय से ऐसे गीतों को न देकर उदाहरण स्वरूप अंचल जी का केवल एक गीत देंगे जिसमें वासना की गंध अवश्य है, किंतु उसकी भौतिकता मानसिक धरातल पर पहुंची हुई प्रतीत होती है। देखिए, ठहर जाओ घड़ी भर और तुमको देख ले आंखें, तुम्हारे रूप का सित आवरण कितना मुझे शीतल, तुम्हारे कंठ की मधुर वंसरी जलधारा सी चंचल, तुम्हारे चितवनों की छांह मेरी आत्मा उज्जवल, उलझती फड़फड़ाती प्राण पंछी की तरु पांखें। हिंदी गीत काव्य के एक उदाहरण से उद्धृत। हिंदू मुस्लिम ऐक्य के गीत। प्रगतिवाद ने प्रत्यक्ष जीवन के संपर्क में आकर राजनीति में भाग लिया और वह यथाशक्ति हिंदू मुस्लिम ऐक्य की ओर प्रयत्नशील रहा है। स्वयं धर्म से उदासीन होने के कारण ये लोग दोनों को समता भाव से देखने की अधिक क्षमता रखते हैं। धार्मिक रूढ़ियों के विरोधी होने के कारण रूढ़िग्रस्त हिंदू धर्म का इन्होंने कुछ अधिक विरोध किया है, यद्यपि मुस्लिम धर्म में भी रूढ़िवाद कम नहीं है। इस समता भाव के लिए सब जगह धार्मिक विद्रोही उत्तरदायी नहीं है, वरन इसके अंतस्थल में कहीं कहीं उच्च मानवता के भी दर्शन होते हैं। नरेंद्र जी की निम्नलिखित कविता में मानवता की ही भावना प्रधान है। देखिए, मैं हिंदू हूँ तुम मुसलमान, पर क्या दोनों इंसान नहीं? मैं तुम्हें समझता रहा मलिच, तुम मुझे बड़िक और दहकानी। सदियों हम दोनों साथ रहे, यह बात न अब तक पहचानी, यह बात न अब तक पहचानी। दोनों ही धरती के जाएं, हम अनचाहे मेहमान नहीं। मैं हिंदू हूँ तुम मुसलमान, पर क्या दोनों इंसान नहीं? प्रश्न 150 है। अलग अलग हम दोनों के व्यवहार, मान, जीवन, दर्शन, सांस्कृतिक स्रोत दोनों के दो, करते दो भावों का संचन, पर दो होकर भी मिल न सके तो दोनों का कल्याण नहीं। मैं हिंदू हूँ तुम मुसलमान, पर क्या दोनों इंसान नहीं? ऐसी कविताएं गीत की श्रेणी में तो नहीं आती है, किंतु इनको एक भावधारा के उदाहरण स्वरूप दे दिया है। छायावादी गीतों की अपेक्षा प्रगतिवादी गीतों में अधिक सरलता और स्पष्टता है, किंतु वे लोग भी लक्षण व्यंजना के प्रयोगों से अछूते नहीं है, उनके अलंकार विधान भी बनते जाते हैं। अंधकार का उपमान कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरनी को बनाया जाता है। उनके विषय भी कुछ नए हैं, जिनके प्रति हमारे हृदय का साधारणीकरण होने में देर लगेगी। प्रगतिवाद ने भी किसी अंश में छायावाद की कला को अपनाया है। वे भी करील, पलाश जैसे प्रतीकों का व्यवहार करते हैं। कुछ छायावादी लोगों के प्रगतिवाद में आ जाने से ये दोनों वाद भी एक दूसरे के निकट आ गए हैं। प्रयोगवाद। इधर अज्ञेय जी के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक के दोनों भागों ने हिंदी के गीत काव्य को छायावाद, हालवाद और प्रगतिवाद की राहों से हटाकर प्रयोगवाद की पगडंडी की ओर उन्मुख किया है। अंग्रेजी के प्रतीकवाद T.S. एलियट, एज्रा पाउंड आदि की कविताओं का विशेष प्रभाव प्रयोगवादी कवियों पर स्पष्ट दिखता है। अज्ञेय जी के अतिरिक्त इस वाद के प्रमुख कवियों में गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और भवानी प्रसाद मिश्र आदि का नाम उल्लेखनीय है। प्रयोगवादी रचनाओं में हरी घास पर क्षण भर, ठंडा लोहा, धूप के धान और नाव के पांव का नाम विशेष गणनीय है। प्रयोगवादी कविता ने हिंदी गीत काव्य को बहुत कुछ नया देने के बाद भी कुछ उलझी हुई संवेदनाओं के कुहासे में भटका दिया है, जहां पर हृदय की सहज अनुभूतियों की कोमल झंकार की अपेक्षा चौंका देने वाले चमत्कारवाद की चमक अधिक है। प्रश्नीयता का इस प्रकार के गीतों में अभाव है। कहीं कहीं तो प्रयोगवादी काव्य सर्वथा गद्य के रूप में आकर रसहीन हो गया है। यद्यपि अनेक नए विषयों और नई तथा निराली मानसिक स्थितियों पर प्रयोगवादियों ने रचनाएं की हैं, और इस प्रकार प्रस्तुत और अप्रस्तुत तथा छंद विधान तीनों का क्षेत्र विस्तृत किया है, तथापि प्रयोगवाद का ध्येय निश्चित न होने तथा भावनाओं के साधारणीकरण न होने से काव्य का सहज रूप प्रस्तुत नहीं हो सका। प्रश्न 151 और उसमें प्रयोगों, उपमा, रूपकादि का ही वैचित्र अधिक दिखाई पड़ता है। नीचे एक प्रयोगवादी कविता का उदाहरण दिया जाता है। पीठ लकीर से हटी हुई उपमाएं विशेष रूप से दृष्टव्य हैं। घाव पुराने पीड़ा के जाने अनजाने में सबसे आज हरे गीले सूजे रह रहकर बह जाती असह्य लहर, मानो बिजली का तीव्र करेंट ठहर पास मौन तड़पा देता नाली के कीड़ों जैसा इधर उधर। आधुनिक गीत काव्य की विशेषताएं। 1. आधुनिक गीत काव्य अधिक व्यक्ति परक है। 2. उसमें प्राचीन की अपेक्षा विचार और प्राकृतिक संपर्क का अधिक समावेश होता है। 3. विचार के भिन्न भिन्न खंडों का अलग अलग बंधों में विभाजन रहता है और उनके अंतिम चरणों का स्थायी से तुत्सा में रहता है। चार, ये पंक्तियां मात्र एक लय प्रधान होती हैं। विशेष एक, गीत काव्य के अतिरिक्त और भी बहुत सी मुक्तक कविताएं लिखी गई हैं, किंतु उनमें प्रायः वे ही प्रवृत्तियां हैं जो गीत काव्य में हैं। उनमें गेयत्व और भावातिरेक अपेक्षाकृत कम है। गीत काव्य में तो विशेष रूप से और वैसी कविताओं में भी मात्रिक छंदों का ही प्राधान्य रहा है। संस्कृत के गीत काव्य गीत गोविंद में भी मात्रिक छंदों का ही बाहुल्य है। अब तो कविता को छंदों के बंधनों से मुक्ति मिल गई है। मात्राओं की भी नाप तोल नहीं होती है। प्रत्येक पंक्ति में अपनी गति और लय होती है, फिर भी मात्राओं की नाप तोल और तुक का मान नितांत रूप से उठा नहीं है। दो, प्रसाद जी ने श्रव्य काव्य को पाठ्य काव्य कहा है। वास्तव में छापे खाने के आविष्कार से श्रव्य काव्य अब पाठ्य ही हो गए हैं, किंतु हम प्राचीन शब्दावली को बदलना नहीं चाहते हैं। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनकी अब सार्थकता नहीं है, किंतु व्यवहार में आते हैं। पत्र ही ऐसा शब्द है, अब पत्र भोज पत्र पर नहीं लिखे जाते हैं। समाप्त।